हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 3। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र और मधुर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वित्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वित्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वित्ति तत्त्वतः। शब्दात् मनुष्याणां सहस्रेषु, मनुष्याणां अर्थात मनुष्यों में से, सहस्रेषु यानी हजारों, कश्चित् यतति सिद्धये, कश्चित् यानी कोई, एक यतति यानी प्रयत्न करता है, किसके लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। यततामपि सिद्धानां, इस प्रकार से जो प्रयत्न करने वाले हैं उनमें से, अपि निसंदेह सिद्धानां, सिद्धों में, सिद्ध लोगों में से, कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। कश्चित् यानी कोई एक, माम अर्थात भगवान कहते हैं मुझको, व्यक्ति जानता है, तत्त्वतः वास्तव में। अनुवाद, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी इसके विषय में क्या कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं। अब वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की एक योनि बनाई है, वैसे तो कैसे है, जलजानव लक्षाणी स्थावर लक्ष विशंति क्रीमिया रुद्र संख्या का दस लक्षाणी पक्षिणाम तीस लक्षाणी पशुणाम चतुर्लक्षाणी मानवा। तो हर एक कैटेगरी, जैसे जलजानव लक्षाणी 9 लाख किस्म के जल के प्राणी हैं, स्थावर लक्ष विशंति जो वृक्ष इत्यादि वनस्पतियां हैं वो 20 लाख किस्म के हैं, 10 लाख क्रीमिया रुद्र संख्या 11 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े हैं और 30 लक्षाणी पशुणम जो पशु हैं, जैसे 4 पैर पे चलते ना, गाय घोड़ा गधा इत्यादि, वो 30 लाख और 10 लाख किस्म के पक्षिणम। ये तो मनुष्य नहीं है ना, ये तो क्या है, पशु है। अब पशुओं को छोड़ के भी चतुर लक्षाणी मानव, भगवान ने 4 लाख किस्म के मनुष्य बनाए। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। ये जो भगवान ने कहा है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ये सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हजारों मनुष्यों में से सिद्धि प्राप्त करने वाला कौन है, प्राप्त करने की इच्छा करने वाला कौन है जो ये जानने का प्रयास करता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। इसका मतलब होता है जो हजार में से एक ये जानने का प्रयास करता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परम सत्य क्या है, वो उस रास्ते पे निकल चुका है जो कि रास्ता परफेक्शन की ओर जा रहा है, सिद्धि की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न तो उठता ही है कि चलो ठीक है, हजार में से एक ये जानने का प्रयास करता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, परम सत्य क्या है, उसके विषय में जानने का प्रयास करता है, लेकिन बाकी के 999% क्या करते हैं ना? बाकी भी तो बच्चे ना, वो भी तो मनुष्य है। भगवान ने कहा है मनुष्यों में से, जानवरों की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, मनुष्य की बात कर रहे हैं भगवान। और बाकी के 999 क्या कर रहे हैं उसके विषय में आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में ही लगा रहता है। यानी यहाँ पर आज अगर हम अपनी मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं तो 999% लोग आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों, मतलब वे कार्य तो जानवर भी करते हैं। शास्त्र कहता है आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम। अगर कोई केवल यही कार्य करता है देन नॉट एनी डिफरेंस विद इन दोज पर्संस एंड एनिमल्स, क्योंकि वही कार्य कर रहा है मनुष्य और वही कार्य कर रहा है जानवर, तो फिर क्या अंतर रह जाएगा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में, और हम देखें भी यदि अपनी सोसाइटी में कौन जिज्ञासा कर रहा है, आप कितने लोगों को जानते हो? मैक्सिमम मिनिमम आप 1000 लोग को तो जानते हो ना, उन 1000 लोग में से क्या एक ऐसा व्यक्ति है जो ये जानने का प्रयास करता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है? सिर्फ एक ही होगा 1000 में से, और भगवान कहते हैं वही सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है, बाकी जो अपने जीवन को जानवरों की तरह जी रहे हैं वो प्रयत्न नहीं कर रहे, वो तो पशु वृत्ति के लिए। इनको शास्त्र कहता है द्वी पद पशु। वैसे पशुओं के लिए जो मैंने बताया था 30 लाख किस्म के भगवान ने पशु बनाए हैं, उसके साथ मैंने बताया था वो पशु वो होते हैं जो 4 पांव पे चलते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि वो मनुष्य जो 2 पांव पे चलते हैं लेकिन कार्य करते हैं वही पशु वृत्ति वाले, तो उनको द्वी पद पशु कहना चाहिए, 2 पद वाले। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। दिव्य ज्ञान मतलब जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा, भगवान ने कहा था ज्ञानम देहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ज्ञात्वा ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे जान लेने के बाद तुम्हें और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके रियल हैप्पीनेस कब प्राप्त होगी? जब दिव्य ज्ञान यानी हु एम आई, मैं कौन हूँ, सबसे पहला उत्तर आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। और आत्मा का कार्य क्या है, भगवान ने पहले श्लोक में बताया मैया सक्त मना पार्थ युगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समक्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा जिसे तुम मेरी माँ मेरे विषय में सब कुछ जान जाओगे, और असंशय सारे संशय तुम्हारे मिट जाएंगे, मद आश्रय मेरी शरण में आ जाओगे और मुझसे अपना योग स्थापित करके मैं आसक्त मना, अपने मन को मुझ में आसक्त कर लोगे। तो अगर हम अपने वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं तो हमें इस दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करना होगा, जिसमें हम अपनी असलियत और अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा का वास्तविक धर्म क्या है उसके विषय में जानने का और उसको उस धर्म को प्रैक्टिकल करने का अभ्यास करते हैं। अब आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता के प्रथम 4 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान, परमात्मा, आत्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। अब जैसे हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 6 अध्याय पढ़ लिए हैं, उसमें शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं वो उन लोग के लिए हैं जिनकी रुचि क्या प्राप्त करने में है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में। जो एक है ना 999 में से एक है जो कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों के विषय में जानने का प्रयास करता है। उसमें क्या है, आत्मा, पहला जिस दूसरे चैप्टर में भगवान ने आत्मा के विषय में बताया, फिर परमात्मा के विषय में, फिर 4th अध्याय में ज्ञान योग, 6th अध्याय में ध्यान योग और उसके द्वारा अनुभूति की क्रिया तथा पदार्थ से आत्मा के पृथक्य के, कैसे देह कैसे आत्मा से पृथक है, कर्मयोग के विषय में भगवान ने 3rd अध्याय में बताया। तो जो दिव्य ज्ञान इस भगवदगीता के प्रथम 6 अध्याय में है उसको यदि कोई जानने का प्रयास करता है तो भगवान ने पहली लाइन में उसके लिए कहा है कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यानी कि जो ये जान लेता है, समझो हजारों में से एक है, जो अपने आप को जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ना परमात्मा का अंश हूँ। अभी तक भगवान को नहीं जाना है लेकिन ये जान चुका है कि मुझे आहार निद्रा भाई मैथुन में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ परमात्मा परम सत्य की ओर जाना है और उसी के लिए वो कार्य करना शुरू करता है, यानी कर्मयोग करना शुरू करता है। लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किए हैं जो कृष्ण भावना भावित है। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, भगवान ने कहा है, स्वयं भगवान के शब्द है, यतता नापि सिद्धानां कश्चिन्नां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन उनमें से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नां वेत्ति तत्त्वतः, कोई एक ही है जो मुझे तत्व से जानता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आज अपने सोसाइटी में या अपने शहरों में जहां पर भी देखें तो हजारों हजारों मंदिर हैं, हजारों हजारों ज्ञान के केंद्र हैं, बहुत सारे हैं। आज तो गली गली में एक केंद्र बनाया गया है, उसमें एक व्यक्ति को बिठाया गया है जो कि अपने मर्जी से आपको बता रहा है कि दिव्य ज्ञान क्या है। वो सब लोग वैसे तो ज्यादा 990% लोग क्या करते हैं, 999% लोग आहार निद्रा में हैं, ठीक है। उनमें से एक एक आता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करने का प्रयास करता है तो वो एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ जाता है जिसे स्वयं पता नहीं है भगवान कौन है। एक बिठा दिया है एक जीव को, उसको गुरु कह दिया जाता है और ये आध्यात्म के नाम पर छला जा रहा है जीवों को कि उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि वास्तव में भगवान कौन है। भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं है, किसी को क्या बताया जाता है, इवन कोई ब्रह्म परमात्मा, कोई देवताओं देवी देवताओं को है ना भगवान बता देते हैं, कोई मनुष्यों को ही बता देते हैं कि ये मनुष्य है, इसी यही भगवान है, यही भगवान का इस कलयुग में अवतार है, ऐसे बता दे। और सबसे बड़ी बात जो है ना बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली है वो बात ये है कि वो दूसरे दूसरे भगवान के विषय में बताते लेकिन भगवान की भक्ति के विषय में बिल्कुल नहीं बताते। वास्तव में भगवान कौन है शास्त्र के आधार पर वो कोई भी अपना शास्त्र बना देते लेकिन वास्तव में जो शास्त्र है उसके विषय में कुछ भी नहीं बताते, है ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो उन लोगों ने प्रयास किया है कि हम सिद्धि की ओर जा रहे हैं लेकिन उनको ही सिद्धि की ओर नहीं लेकर जा, तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि गलती किसकी है, उन संस्थाओं चलाने वालों की गलती है या उस सीधे साधे मनुष्य की गलती है जो कि वहां पर आकर गलत ज्ञान प्राप्त कर रहा है। 100% उस व्यक्ति की गलती है जो कि गलत ज्ञान प्राप्त कर रहा है। अगर दुकानदार कोई गलत वस्तु बेच रहा है तो ग्राहक को खरीदने वाले को तो देखना चाहिए कि मैं गलत वस्तु खरीदा हूँ, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, इतना समय देकर, इतना धन देकर मैं कोई वस्तु को खरीद रहा हूँ और बाद में पता चले कि ये ना खाने की योग्य नहीं है, इससे मुझे जहर, मतलब इससे मैं अपने जीवन को नष्ट कर सकता हूँ, तो ये उसकी गलती है ना। उसको देख भले ही उन संस्था खोलने वालों ने भी गलती की है लेकिन हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हमें भगवान ने शास्त्र दिया, हम कैसे उनकी बात मान सकते हैं। शास्त्र में जो लिखा हुआ है, आगे आगे श्री प्रभुपाद जी वो बताएंगे श्रुति स्मृति पुराण आदि के विषय में कि आप यदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य, इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने पहला शब्द लिखा है मनुष्य की बात हो रही है, यहाँ पर किसी जानवर की बात नहीं होती है जिसके पास बुद्धि नहीं है। ये शास्त्र मनुष्य के लिए भगवान ने बनाए, तो आप जहां से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो जरा चेक तो करो कि वो शास्त्र के विषय में आपको बता रहे हैं, क्या वो आपको वास्तव में भगवान का दर्शन करा रहे हैं। अगर नहीं करा रहे तो क्यों पड़े उनके पीछे, क्यों रोज रोज अपने जूते घसा के उस संस्था के साथ या उस केंद्र के साथ जुड़ रहे हो। तुम्हारी गलती है उस व्यक्ति से ज्यादा अधिक तो तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम उसका साथ दे रहे हो, उससे श्रवण कर रहे हो जो कि तुम्हें वास्तविक सिद्धि की ओर लेकर ही नहीं जा रहा है। तुम्हारा जो इतना बड़ा त्याग है कि वास्तव में भौतिक इंद्रियों के संतुष्टि के को त्याग कर यदि कोई सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो उसका कितना बड़ा त्याग है संसार में, और वो इतना सारा त्याग करने के बाद भी यदि गलत ओर जा रहा है तो कितना बेवकूफ है वो। तो आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया है जो कृष्ण भावना भावित है। वास्तव में भगवान ने स्वयं कहा यततामपि सिद्धानां, उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, कोई एक ही है जो मुझे जानता है, जो मुझे वास्तव में जान लेता। यानी यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं कि वास्तविक सिद्धि अन्य केंद्रों की ओर जाना नहीं, ब्रह्म परमात्मा और भौतिक वस्तुओं की ओर उलझना नहीं है, बल्कि वास्तविक सिद्धि क्या है, मुझे प्राप्त करना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्मभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की उपेक्षा यह सुगम है। यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर लोग जो ब्रह्म ज्ञान में जाते हैं ना वो क्या सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, ब्रह्म जो है ना भगवान को ब्रह्म समझना, निराकार ज्योति की उपासना करना सबसे ज्यादा उत्तम है। तो इसलिए जो भक्त हैं वो तो निम्न कोटि के हैं, वो तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो अभी गुड्डे गुड्डियों की तरह भगवान का श्रृंगार करते हैं, उनको खिलाते हैं, जब वो आगे आएंगे तो क्या होगा फिर वो ब्रह्म को पहुंचेंगे। अभी तक तो उनका स्टार है लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अन्य योगी जो निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की उपेक्षा यहाँ सुगम है। अभी इसको हम साबित करेंगे कि कृष्ण को जानना बहुत ज्यादा कठिन है इन ब्रह्म जो ब्रह्मवादी होते हैं ना उनसे। आगे बात करते हैं, आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण परम पुरुष हैं किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। परम पुरुष हैं यानी एक व्यक्ति हैं जिनसे आप संबंध जोड़ सकते हो। वास्तव में संबंध जोड़ना है सिद्धि। हमारा संबंध जो कृष्ण से टूट गया है, अब कोई है ही नहीं, व्यक्ति नहीं है, खाली ब्रह्म है, ज्योति है, उसके साथ क्या प्यार करेंगे, क्या संबंध जोड़ेंगे, जिसकी कोई रियलिटी नहीं, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं, जिसका शरीर नहीं, जिसके अंदर हृदय नहीं, तो उसके साथ क्या संबंध जोड़ेंगे। तो शीला प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे हैं कि अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कृष्ण को जानने की उपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ सकते। भगवान को समझना केवल अगर किसी तरह से, भगवान ने कहा है, इतना सुंदर लगता है मुझे 11.53, ना हम वेद न तपसा ना दाने ना चेच्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि माम यथा। ना हम वेदाय न तपस्या, मैं वेद अध्ययन करने से नहीं मिल सकता, ना ही तपस्या करने से मुझे प्राप्त कर सकते हो, ना दाने ना ही दान देने से, ना चेच्यया और ना ही पूजा करने से। शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि माम यथा, बेशक कोई भी इन साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो ज्ञान अगर खाली कोरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के अनुभूति प्राप्त करते हैं या परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, वो कृष्ण को नहीं जान सकते, क्योंकि कृष्ण ने तरीका बताया है 11.54 में। भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदोर्जुन, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, अहमेव विदो, एव का मतलब होता है केवल एक ही तरीका है मुझे समझने का, अनन्य भक्ति के द्वारा ही, अहम एव विदो अर्जुन, एक अर्जुन मैं केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही ज्ञेय हूँ, जाना जा सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि योगी तथा ज्ञानी कृष्ण को नहीं समझ सकते, यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। हालांकि जो ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्च अधिकारी है मायावादी फिलोसोफर में, सबसे उच्च इसका स्थान है, कौन है वो, शंकराचार्य, वो स्वयं स्वीकार करते हैं अपने गीता भाष्य में कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, कि कृष्ण ही भगवान है, इसलिए आपको कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। लेकिन फिर भी उनके स्वयं के शंकराचार्य के अनुयायी भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भले ही उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर लिया है, परंतु जब तक भगवान के भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ संपर्क नहीं करेंगे, कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा है भक्त्या त्वनन्यया शक्य, मुझे जानने के लिए बाकी तुम्हारी सारी क्वालिफिकेशन कोई काम नहीं आएगी, आप केवल प्रेम और भक्ति के साथ मुझे समझ सकते हो। आगे भगवान कहते हैं कृष्ण भगवान, सॉरी कृष्ण भोपाल जी बता रहे हैं, कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं, ईश्वरः परमः पुरुषः, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अब यहाँ पर ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता के श्लोक को श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा जी स्वयं जब भगवान ने उनको उत्पन्न किया था और उत्पन्न करने के बाद दिव्य ज्ञान हृदय में दिया था, आगे हम भगवत भागवतम में पढ़ते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः, कि वो ब्रह्मा जी जिनको स्वयं भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, मोहयंती सूरया, ऐसे बड़े बड़े देवता भी भगवान को जानने में मोहित हो जाते हैं। हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म मोहित विमोहन लीला आती है, उसमें क्या ब्रह्मा जी जब भगवान को देखते हैं कि ये कैसा कृष्ण, ये भगवान हो सकता है, ये कैसे अपने ग्वाल बाल इतने निम्न कोटि के प्राणियों के साथ खा रहा है, उनका जूठन खा रहा है, ये किस तरह से उनके साथ खेल रहा है। एक बारी क्या हुआ, एक भगवान के मधुमंगल जो है वो बोला, कृष्ण देखो मेरी मैया ने कितनी अच्छी छाछ बनाई है। तो कृष्ण ने बोला अच्छा छाछ बनाई है, मुझे पिलाओ। तो कृष्ण को छेड़ते उसने क्या किया, पूरी छाछ अपने मुंह में भर दी, मुंह में भर दी, निगल भी नहीं रहा था क्योंकि कृष्ण ने नहीं पी थी, कैसे निगल सकता है। भगवान का भक्त वो एक दाना भी अपने गले से नीचे नहीं उतार सकता जो कि कृष्ण ने नहीं खाया हो, तो अब निगल भी नहीं सकता है, मस्ती में पी लिया। अब क्या करे, भगवान को भगवान की ओर देख रहा है और कृष्ण ने सोचा कि ये तब तक तो पिएगा नहीं जब तक मैं नहीं पीऊंगा। कृष्ण जोर से उसके मुंह पे ऐसे, क्योंकि उसके गाल भरे हुए थे ना, माउथ में पूरी लस्सी थी, और ऐसे करके उसके मुंह से लस्सी निकाल के कृष्ण उसको ग्रहण कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोला ये भगवान हो सकता है, नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने फिर यहाँ ये लीला सबको पता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली, वो ब्रह्मा जी जिनको स्वयं भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया वो भी मोहित हो गए। इंद्र मोहित हो गए, भगवान को चैलेंज कर रहे थे कि मैं ऐसी वर्षा कराऊंगा कि पूरे वृंदावन को डुबो दूंगा, भगवान के होते हुए क्या उनके भक्तों को कोई कष्ट पहुंच सकता है। जब इतने बड़े बड़े देवता भगवान को नहीं समझ सकते, तो फिर आज के जो साधारण व्यक्ति कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकता, इसने ये किया है, ये वो किया है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान को समझना इतना ज्यादा आसान है। भगवान ने स्वयं आज के श्लोक में कहा है अपने मुखारविंद से कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः, हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। अब एक हजार में से एक निकला, 999 बचे, फिर दूसरे हजार में से एक निकला, 999 बचे, इस तरह से बाकी जो 999 बचते जाते वो साइड में करते जाएंगे, ठीक है। अब जो एक एक निकलता है ना, एक एक जो निकलता है उसकी जब हजार की टीम बन जाएगी, उसमें से भगवान कहते हैं यततम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, इन जो हजार में से एक जो निकला है और ये जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े थे, उनमें से एक, सिर्फ एक ऐसा है जो कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो आप सब जो कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो, भगवान को कृष्ण को ही समस्त कारणों का कारण मान रहे हो, जो कि कृष्ण की शरण में हो, जो कि भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हो, भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हो, कितना सक्सेस हो रहे हो वो बात तो साइड में रखो, भगवान तो आज उसकी महानता बता रहे हैं कि जो इस बात पर एग्री है कि कृष्ण ही परम तत्व है, परम सत्य है, ब्रह्म परमात्मा की जो है वो वास्तविक सिद्धि जो है वो भगवान को जानना है, तो वो योगी जन जो करोड़ों करोड़ों साल तक ब्रह्म की अनुभूति के लिए गुफाओं में जाकर तपस्या करते हैं, जो योगी जन ध्यान लगाते हैं करोड़ों करोड़ वर्षों तक, उनसे करोड़ गुना ज्यादा भगवान उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो कि आज अपने घर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनाता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान का श्रृंगार करता है, आरती करता है, भगवान की सुंदर लीलाओं को श्रवण करता है और भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपने कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है। भगवान कहते हैं तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम तो करोड़ों में से एक हो जिसने मुझे मुझे चुना है। तो यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि भक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं है। इतना अच्छा श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो अभक्त हैं, यानी कि जो ब्रह्म को भगवान मानते हैं, या जो परमात्मा या योगी या जो ज्ञानी जन होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग तो सुगम है, ये तो बच्चा भी कर सकता है। तो बच्चे हम जो है ना, वो ऐसा बच्चों वाला कार्य नहीं करेंगे, ये तो गुड्डे गुड़ियों की खेल है। जो श्रृंगार करना, विग्रह को प्रसाद खिलाना, ये कोई भक्ति है? ये तो बिल्कुल पागल है ऐसे, ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों का काम है, नादान है, बेवकूफ है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वे भले ही कहते रहे, घोषित करते रहे कि भक्ति मार्ग सुगम है, यदि वो सुगम मार्ग है तो फिर उस पर चलते क्यों नहीं है? और अगर आसान मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, तो फिर उस पर चल के दिखाओ ना, यदि सुगम है तो। यदि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना कि अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण कर रहे हैं? उनको मुश्किल मार्ग की तरफ नहीं जाना चाहिए ना, ध्यान लगाना, ध्यान ये ज्ञान प्राप्त करना ये, या फिर ब्रह्म ज्योति के अंदर करोड़ों करोड़ों साल तक है ना अपना ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल जिसमें टेस्ट ही नहीं है। वास्तव में आत्मा को आनंद चाहिए, और आनंद केवल सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण से ही, जहाँ परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, उन्हीं से आनंद प्राप्त हो सकता है। क्यों भटक रहे हैं ब्रह्म ज्योति में फिर? क्योंकि वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। शीला प्रभुपाद जी आज बता रहे, भले ही हम कहते रहे कि हमारी संस्था में आना क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नियमित सिमरणेन कालः, आपको कोई नियम का पालन नहीं करना है, खाली स्मरण करना है बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उन्हीं चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे श्लोक में कह दिया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित सिमरणेन कालः, के करोड़ों करोड़ों नाम है भगवान के, और उनमें समस्त शक्ति अपनी डाल दी है, स्मरण करने का कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई नियम नहीं है। लेकिन आगे क्या कहते जानते हो? तृणादपि सुनी सेना तरोरपि सहशोना अमानी न मान देना कीर्तनी हसदारी। ये जो चार नियम है, तृणादपि सुनी सेना, अपने आप को तृण से भी अधिक गिरा हुआ समझना, राह में गिरे हुए तिनके से भी अपने आप को तुच्छ मानना, और वृक्ष से भी अधिक अपने आप को सहनशील बनाना, अपने लिए मान की कोई उपेक्षा ना करना, और अन्य समस्त लोगों का सम्मान करना, इससे ज्यादा कठिन इस संसार में और कुछ नहीं हो सकता। हर एक जीव अपनी अपने मान के लिए जी रहा है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए जी रहा है, अपने लाभ के लिए जी रहा है, अपने लोभ के लिए जी रहा है। इस तरह से भक्त बनना, जो कि अपने लिए मान की कोई उपेक्षा नहीं करता, अपने आप को घास के गिरे हुए तिनके से भी तुच्छ समझता है, ये है भक्ति का नियम। तो ये हर किसी के लिए सुगम नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। भले ही शुरू शुरू में कहा जाता है तथा कथित कि भक्ति मार्ग सुगम है, लेकिन विधि विधानों के साथ जब भक्ति की जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, चार नियम का पालन करो, आपको मांस नहीं खाना है, आपको परिस्त्री संग नहीं करना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको नशा नहीं करना है, आपको भगवान की सेवा करनी है, मंगल आरती करनी है, प्रभात साधना करनी है, शास्त्र अध्ययन करने हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की शास्त्रों को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना है, क्या ये आसान है आज के दौर में? भगवान की भक्ति करना सुगम नहीं है, लेकिन क्यों करनी है? क्योंकि यही सिद्धि है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। भले ही कितना ही अपने आप को चिंतक बोले, कितना ही अपने आप को आध्यात्मवादी बोले, भगवान ने स्वयं कहा है यदाम अभी सिद्धानाम कश्चन नाम वेति तत्ता, जो एक है सिद्धों में से वो उसमें से कोई एक ही मुझे जान सकता है, बाकी सब तो अपने इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसा अमृत सिंधु में 1.2.101 में लिखते हैं, इतना सुंदर है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिवन विना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात ये कल्पते। इसका अत्यंत ही सुंदर अर्थ है कि वो व्यक्ति जो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना के, जो श्रुति यानी कि जो भगवान के, जो श्रुति का मतलब होता है श्रवण किया है, जिन महान भक्तों ने उन्होंने जो उनका श्रवण किया हुआ ज्ञान है, श्रुति का मतलब होता है शास्त्र या वेद जो कि श्रवण करके प्राप्त किए जाते हैं। स्मृति यानी कि जिन्होंने महान भक्तों ने जो याद किया हुआ लिखा है। पुराण यानी कि जो वेद शास्त्र पुराण और पंचरात्र विधि जो कि नारद मुनि ने बनाई है, यदि उनके बिना, इन शास्त्रों को फॉलो किए हुए बिना अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, अगर वो भक्ति का ढोंग कर रहा है, मतलब वो तो भक्ति हो ही नहीं सकती जो शास्त्र के आधार पे है। आज अगर हम देखें तो 999% हजार में से कोई श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि को नहीं मान रहा है, अपनी मनमति से वो क्या कर रहा है, भक्ति के अलग अलग तरीके बता रहा है। किसी एक कोई शास्त्र साफ साफ कहता है, भागवत साफ साफ कहता है, एते चंद सकला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो ये बताओ ना जीवों को। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, तो ये बताओ ना लोगों को। जब शास्त्र हमारा कह रहा है कि कृष्ण भगवान है, भगवान की भक्ति, भगवत गीता कहती है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरण वज, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सारे धर्मों को आप साइड में कर दो, ये है ना वास्तविक भक्ति। लेकिन यदि कोई श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचर आदि को नहीं मानता है तो यहाँ पर आगे कहते हैं एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताएव कल्पते। उत्पाताएव मतलब समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाते हैं, वो सिर्फ उत्पात मचाते हैं, वो कोई भी किसी को वास्तविक मार्ग सिद्धि का नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि मनुष्यों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, वो केवल और केवल उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। कोई अगर किसी के शरीर के साथ अत्याचार करता है ना, तो उसको कितनी सजा मिलती है, परंतु ये तो आत्मा के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके वास्तविक प्रेमी से दूर करके उसको भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित कराया जाता है। कितना बड़ा व्यभिचार है आत्मा जो कि भगवान का अंश है, केवल भगवान के साथ ही अपना संबंध जोड़ के प्रसन्न हो सकती है। तो ये जो तथा कथित ज्ञान के बड़े नेता बने हुए हैं, वो आत्मा को उसके वास्तविक प्रीतम से दूर करके भौतिक वस्तुओं में लगा रहे हैं। तो श्रील रूपा गोस्वामी कहते हैं वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। मतलब जो निर्विशेषवादी हैं, जो कि भगवान के किसी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, या जो कि परमात्मा वेता हैं यानी कि जो योगी जन है, हृदय में परमात्मा को का ध्यान करते हैं, योगी जो है वो कृष्ण को वो कैसे मान सकते हैं कि जो परम सत्य है वो यशोदा का बेटा बनकर उसकी लाठी की मार खाकर उसके द्वारा बंधना स्वीकार करता है। उसको कभी भी ये समझ में नहीं आ सकता कि जो परम सत्य, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो अर्जुन का रथ चलाने के लिए स्वीकार करता है, वो ड्राइवर बनना स्वीकार करता है। उनको कभी भी प्रेम की अनुभूति के विषय में समझ में बात आ ही नहीं सकती कि भगवान ऐसा भी कर सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। अभी श्री प्रभुपाद जी बताते जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पर लिखा है मोहयंत यत्सुरा, यहाँ बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो आज का साधारण निर्विशेषवादी या परमात्मावादी यदि भगवान को नहीं समझ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वयं कहा माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्व से नहीं मान सकता जैसा कि नहीं जानता है जैसा कि मैं हूँ, और यदि कोई जानता है वो क्या होता है, भगवान कहते हैं महात्मा सुदुर्लभ। और वो महात्मा कैसे बनता है भगवान, ये वाला श्लोक कौन सा है, 7.19 में भगवान ने कहा बहुनाम जन्म नामन्ति ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो ये जान लेता है करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान, यहाँ पर जो वास्तविक सिद्धि की भगवान बात कर रहे हैं उसको 9th अध्याय में भगवान बहुत ही क्लियर करेंगे। अभी भगवान कह रहे हैं वास्तविक सिद्धि क्या है, मैं हूँ और मुझे जानना हजारों में से करोड़ों में से कोई एक ही जान सकता है, और वो कब जानता है, बहुनाम जन्म नामन्ते, करोड़ करोड़ जन्मों के बाद। कभी ब्रह्मवेता बनता है तो कभी परमात्मा वेता बनता है, कभी कर्म कांड में लगता है, कभी ज्ञान कांड में लगता है, कभी ध्यान कांड में लगता है, से करते 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 जब बहुनाम जन्म नामन्ते उसके करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद उसे ये सचमुच का ज्ञान होता है। और वो क्या कहता है, वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण भगवान है, समस्त कारणों के कारण है, तो स्वमहात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बन जाता है। वास्तव में जो ब्रह्मवादी है ना वो क्या बनना चाहते जानते हो, वो परमात्मा बनना चाहते। बोलते हैं कि हम भगवान में लीन होकर भगवान बन जाते हैं, हम आत्मा है, भगवान का अंश है, भगवान की शरण में आ गए तो महात्मा तो बन सकते हैं, लेकिन यदि भगवान बनने की चेष्टा की तो महात्मा परमात्मा तो नहीं बन सकते, दुरात्मा बन जाएंगे। जैसे हिरण्यकश्यपु ने ये स्ट्रगल की थी कि मैं भगवान बनूं तो क्या कहा जाता है उसको, दुरात्मा कहा जाता है। इसी तरह से यदि आज का कोई ब्रह्मवादी भगवान के साथ मिलकर एक होना चाहता है तो वो दुरात्मा है वास्तव में, जो कि अपना अस्तित्व खोकर भगवान के साथ मिलना चाहता है, भगवान के साथ एक होकर स्वयं भगवान बन जाना चाहता है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते तो ऐसा महात्मा विरला होता है, अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। यहाँ पर श्री रूपवाद ने बोल दिया कि वास्तव में जो शुद्ध भक्त होता है वो भी पूर्णतया भगवान को जानना असंभव है। वेदे शुद्धर्लभ, जो वेद है वो भी भगवान को नहीं जान सकते। स्वयं शेषनाग करोड़ों करोड़ों मुखों से, जो कि संकर्षण, जो कि ना साक्षात भगवान की शक्ति है, आदि गुरु
जो बलदेव जी हैं वो भी भगवान के विषय में भगवान की महिमा को बताते बताते अपने करोड़ों मुखों से भी भगवान की महिमा का गान करते हुए भी कहते हैं कि मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ, मैं भगवान की तो असीम महिमा है उसके विषय में बताना मेरे लिए संभव नहीं है। तो हम जैसे तुच्छ प्राणी जिसके अंदर इतना छोटा सा दिमाग है, इतनी छोटी सी बुद्धि है, वो कैसे भगवान को समझ सकते हैं? क्योंकि हाँ श्रीला प्रभुपाद ने कहा केवल शुद्ध भक्ति कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता ऐश्वर्य उनकी संपत्ति यश बल सौंदर्य कहाँ से जानेगा जीव पूरा का पूरा ज्ञान और वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है कि हाँ ये जान लेता है कि ये संपूर्ण कितना है ये नहीं पता, लेकिन जो सारा का सारा है वो कृष्ण से रिलेटेड है, वो कृष्ण का ही है, कृष्ण की संपत्ति है। ये षडैश्वर्य कृष्ण से कृष्ण के ही है, उसमें से थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप अगर किसी को दिया है उस समुद्र का, तो अपने आप को वो बड़ा बुद्धिमान बड़ा सुंदर या कुछ और मानने लगता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्व से जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, इसी भगवान यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों की कृपा क्यों मिल रही है भगवान को जानने की। हम अपने विषय में अगर किसी को जनाते हैं या बताते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है, उसका एक ही कारण होता है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, है ना। आप अपने विषय में किसी को बताओगे, क्यों बताओगे? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो, उस पर भरोसा करते हो। तो उसी तरह से भगवान अपने आप को भक्त के सामने जाहिर करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान को इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो इन भौतिक इंद्रियों से बहुत परे हैं। अब हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हैं तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा ही हम कोई कार्य कर सकते हैं, हमारे पास और कोई आध्यात्मिक इंद्रियां तो है नहीं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि आध्यात्मिक इंद्रियां है नहीं, भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता, फिर तो प्रॉब्लम हो गई ना। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि वास्तविक सिद्धि क्या है, भगवान को जानना, तो क्या किया जाए? तो ये जो संतगण होते हैं ना, जो महावैष्णव होते हैं ना, वो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भावित ग्राह्यमिन्द्रिय। अतः श्री कृष्ण नाम आदि यानी भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का यश न भावित ग्राह्यमिन्द्रिय, ये इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। फिर क्या करो, सेवान्मुखी ही जिह्वादौ स्वयमेव सुफूर्तयः सुफूर्त्यदः। सेवान्मुखो ही जिह्वादौ, सबसे पहले आप क्या करो, सेवा करो। अगर आप सेवा करोगे भगवान की, किस तरह से? आप यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, चलो ठीक है सेवा भी तो हम फिर भौतिक इंद्रियों से करेंगे, है ना, भौतिक इंद्रियों के द्वारा तो उनको जाना नहीं जा सकता, तो सेवा स्टार्ट कहाँ से करें? आदो, आदो का मतलब होता है स्टार्ट करो, कहाँ से? जिह्वा से, अपनी जिह्वा से सेवा स्टार्ट करो भगवान की। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जीव भी तो, जीवा से यदि हम सेवा स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी तो भौतिक इंद्रिय है, पहले ही कह दिया न भवित ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रिय से तो आप उसे जान नहीं सकते हो, फिर क्या फायदा क्या है इस नाम रटन का, जब भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। तो यदि हम जिह्वा से सेवा स्टार्ट करते हैं, जिह्वा से बहुत सारी सेवा होती है, भगवान के पवित्र नाम का जप किया जाता है, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद को सेवन किया जाता है, भगवान की कथा और लीलाओं के विषय में पढ़ा जाता है, दूसरों को भगवान का कीर्तन किया जाता है। सबसे बड़ा भगवान का कीर्तन, भगवान की जो कीर्ति है जो कि शास्त्र में लिखी हुई है वो सबको बताई जा सकती है, ऐसा करने से क्या होगा? स्वयमेव सुफूर्ति यदः, ऐसे करने से भगवान प्रसन्न होंगे और स्वयमेव अपने आप को सुफूर्ति यदः आपके सामने प्रकट करेंगे, आपके स्ट्रगल को देखकर, आपकी सेवा को देखकर जब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे भगवान बताते ना 10.10 में, तस्मा तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, जो प्रेम और भक्ति के साथ सदैव भजन करता है मेरा, मेरे नाम का जप करता है, मेरी कथाओं का श्रवण करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम, अभी उसके पास भले ही वो आध्यात्मिक इंद्रिय नहीं है लेकिन बाद में ददामि मैं उन्हें देता हूँ। भगवान आध्यात्मिक है तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान आपको ऐसी बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयान्ति ते, जिससे वो मुझे जान सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं, मुझे ग्रहण करते हैं, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्, मुझे जान सकना, मुझे देख सकना, मुझे तत्व से समझ सकना, मुझे प्राप्त करना, ये तुम्हारे इन इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है। यदि भक्ति से तुम मेरे नाम का भजन करोगे, मेरे कथाओं का श्रवण करोगे, पवित्र शुद्ध भक्तों का संग करोगे तो भगवान स्वयमेव सुफूर्ति यदः स्वतः ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। अनुवाद, कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्व से समझा नहीं जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा ही की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। अर्थात जब भगवान जीव पर अनुग्रह करते हैं तभी ही भगवान को जीव समझ सकता है, अन्यथा उनकी इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझना संभव नहीं है। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालम् पंगुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ॐ अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। इसकी इस श्लोक के ऊपर यदि बोला जाए तो समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने वास्तविक सिद्धि के विषय में बताया है। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्ध है। वास्तव में भक्तों, ये भौतिक जगत एक जेल की तरह है। जैसे एक जेल होती है उसमें किन को डाला जाता है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हैं उनको जेल में भेजा जाता है। ठीक, अब यह जो भौतिक जगत है वो ऐसी जेल है जहाँ पर उन जीवों को भेजा जाता है जिसने भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है। भगवान की जो गवर्नमेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने वाले को इस संसार में, इस संसार की जेल में डाला जाता है। अब जिस तरह से जेल में भी हर एक अलग मुजरिम को, जो जितना संगीन मुजरिम होता है उसको वैसे ही सजा दी जाती है, वैसे ही जेल खाने में भेजा जाता है, उसी तरह इस संसार में भी वैसा ही शरीर मिलता है जैसे कि आपने अपराध किया है। किसी को मच्छर, किसी को गधा, किसी को बंदर, किसी को गटर में रिंगता हुआ कीड़ा, अब वो सब उसके कर्मों के अनुसार, जितना बड़ा अपराध उतनी ही बड़ी सजा। अब वैसे तो जानवर योनि में, पशु योनि में कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर नहीं सकता, लेकिन इनमें एक ऐसी योनि होती है जिसको मनुष्य कहा जाता है, उसको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि वो यदि वो चाहे तो वो सिद्धि प्राप्त। सिद्धि का क्या मतलब है, यहाँ पर हमें सिद्धि पे बात करनी है, यानी कि आप अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। वास्तविक लक्ष्य क्या है, केदी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कैसे इस जेल से बाहर निकलूं। लेकिन भगवान ये कहते हैं यहाँ पर कि इस संसार में दूसरी योनियां तो ये कार्य कर नहीं सकती हैं कि हम कैसे इस भौतिक जेल से बाहर निकलें। तो वो तो बेचारे जब तक मनुष्य बनेंगे तभी उनको ये अवसर मिलेगा, लेकिन जिनको ये अवसर प्राप्त हो गया, मनुष्य बन गए हैं, उनमें से भी सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्ध है, उनमें से कोई एक ही ऐसा होता है जो ये सोचता है कि मुझे इस जेल से बाहर निकलना है। यानी कि अब वो क्या करता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इस जेल से बाहर निकलने का प्रयास करता है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिमजना, जो शास्त्र कहता है वही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गीता कहती है वही रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन आज का मनुष्य ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो अपने ही का इच्छा के अनुसार कार्य करता है, तो समझो वो उस सिद्धि के रास्ते को अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना है, किधर जाना है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या प्राप्त करना है। वो भौतिक इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। जैसे ये समझा जाए कि यह जो शरीर आपको मिला है वो एक गाड़ी की तरह है। अब इस गाड़ी में आप अपना कार्य करो, उसका एक ही कार्य होता है गाड़ी का कि आपको मंजिल तक पहुंचाए, है ना, गाड़ी का तो और कोई कार्य। लेकिन यदि आप गाड़ी को गैरेज में खड़ा कर दो और उसको रोजाना उसके अंदर पेट्रोल डालो, उसकी ट्यूनिंग कराओ, उसकी बैटरी सही करवाओ, उसको कलर करो और उसके जो ग्लासेस वगैरह हैं, विंडो स्क्रीन्स वगैरह, उसके अंदर बहुत बहुत अच्छे से फैसिलिटीज रखाओ, गाड़ी को तो आप बहुत ही अच्छे से सुविधा प्रदान करो, लेकिन उसमें बैठकर आगे बढ़ने का प्रयत्न ना करो, तो फिर उस गाड़ी के होने का आपने लाभ नहीं उठाया। उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर में, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को देखो नहीं, उसको सजाओ नहीं, उसको उसकी केयर नहीं करो, लेकिन उसकी केयर क्यों करनी है, क्योंकि आपको इसके द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, अब मनुष्य शरीर में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस भौतिक जेल से बाहर निकलें, और उसके लिए क्या करना है, भगवान की भक्ति। अब अगर इस शरीर को खाली हम खिलाते रहेंगे, सुलाते रहेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन में यदि हम अपने इस जीवन को बर्बाद कर देंगे, तो समझो अपने मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मनुष्य नाम कश्चित यतति सिद्धये, कोई एक ऐसा होता है जो सोचता है कि मैं अभी सिद्धि की ओर जाऊंगा, यानी जेल से निकलने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो भी क्या करता है, अलग अलग रास्तों की ओर भटक जाता है और वास्तविक जगह जो उसकी है वहां तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन वास्तविक जगह क्या है, यततम अपि सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्त्वतः, उनमें से जो प्रयास करने वाले हैं उनमें से भी कोई एक है जो वास्तविक लक्ष्य जीवन का है, अर्थात भगवत प्राप्ति, उसको जान सकता है, उसको समझ सकता है, भगवान को समझ सकता है कृष्ण के साथ, क्योंकि आत्मा है ना। अब ये समझो, अंतिम बात कहकर मैं इसना लेक्चर को विराम दूंगी कि अगर किसी के घर में किसी कन्या का जन्म होता है ना, तो हमें ये पता होता है कि एक ना एक दिन उसको विदा करना है, तो उसके लिए तैयारी जरूरी है ना, तैयारी करती है, माँ सोचती है कि मुझे अपनी बेटी को विदा करना है। और उसी तरह से हम भी इस संसार में आए हैं, और इस संसार में आने के बाद एक ही वास्तविकता है कि एक ना एक दिन हमें इस संसार से वापस जाना है। ठीक है, और अब एक लड़की जिसका आपको विवाह कराना है, तो माँ क्या, अगर वो पूरी तैयारी करती है, समझो उसके लिए जहेज भी बनाती है, फर्नीचर भी लेती है, दान कपड़े वगैरह जो भी है सारी चीजें ले लेती है, लेकिन उसके लिए लड़का नहीं ढूंढती, खाली शादी करा देती है, तो क्या ऐसा संभव है? कितनी बड़ी बेवकूफी है, यानी वो सबको जानती है कि मेरी बेटी का विवाह होगा, मुझे तैयारी करनी है, ये करना वो करना, लेकिन पति को नहीं समझा तो फिर वो भेजेगी कहाँ, उसको किसके घर पे भेजेगी शादी विवाह करके। तो इसी तरह से ये ऐसे ही है कि यदि हम आध्यात्मिक में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि अपने भगवान वास्तव में क्या है, कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पति, हमारा वास्तविक पति कृष्ण है, हम इस संसार में सब एक दिन रुखसत होना है, विदा होना है और अपने पति के घर पे जाना है, तो अपने पति को पहले जानना तो है, उसके लिए तैयारी करनी है, लेकिन ये तो जाने कि जाना कहाँ है हमें। प्रेम वास्तव में आत्मा एक ही चीज से आनंदित हो सकती है और वो क्या है, प्रेम। और प्रेम केवल आप जो वास्तविक कृष्ण है, क्योंकि आत्मा का एकमात्र रिश्ता एकमात्र संबंध केवल कृष्ण से है, आत्मा तब तक संतुष्ट हो नहीं सकती है जब तक कि वो अपने कृष्ण को प्राप्त नहीं करती है। तो यदि कोई आगे बढ़ रहा है और अपने ये नहीं जानता कि मुझे जाना कहाँ है, प्राप्त किसको करना है, किसके पास जाकर मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, तो फिर उस सारे ज्ञान का क्या फायदा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्ध है, कोई एक ही ऐसा है जो सिद्धि मार्ग पे चलता है, जो अपने जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए प्रयास करता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, के जो एक ऐसा होता है जो मुझे जानता है, मुझे सरेंडर करता है। तो यहाँ पर भगवान ने हमें ये बताया कि भगवत भक्ति बहुत दुर्लभ है। वैसे तो आध्यात्मिक मार्ग को बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भी, उनमें भी जो वास्तव में परिपूर्णता है यानी कृष्ण को जानना, वो कोई एक ही इस मार्ग पर चलता है। क्योंकि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो ज्यादा ब्रह्म मार्ग पर चले जाते हैं, परमात्मा मार्ग में कोई कर्म कांड में लग जाता है, मतलब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना ही या तो जीवन का लक्ष्य बन जाता है, शास्त्र पढ़ने के बाद भी उन्हें कृष्ण नहीं समझ में आता। अब क्योंकि इतना समझने के बाद अर्जुन ने पूरा केंद्रित हो गया कृष्ण के ऊपर। अब तक भगवान ने ये नहीं बताया था कि मुझे समझना ही जीवन का लक्ष्य है, इतना क्लियरली नहीं बताया था, लेकिन भगवान ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन का पूरा ध्यान भगवान की ओर चला गया कि आज भगवान क्या बता रहे हैं कि मुझे जानना ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। तो अब देखते हैं जब अर्जुन अपना पूरा का पूरा ध्यान कृष्ण की ओर कर दिया, क्योंकि भगवान ने पहले श्लोक में कहा तत्क्षणो, अब सुनो, तो अभी हम सबको सुनना है कि आगे भगवान क्या कहते हैं। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।